संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन्हें चले हमारे। शुद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, जिसमें सिद्धों की पूजन का प्रकरण है। कल बताया था, वैसे तो सिद्धों में अनंत गुण हैं, लेकिन जो उनमें स्वाश्रित गुण हैं, आत्मा में अनंत गुण है ना, और उन्हीं सभी गुणों का विकास उनके अंदर हो गया है, तो उन्हें हम सदगुण कहने लगते हैं। गुण तो गुण ही है, उन दुर्गुणों सदगुण रूप में कुछ भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है वो दूसरों की अपेक्षा जो उनमें गुण है उनकी बात चल रही है। और वो इसलिए कि जिन कर्मों पर हम मोहित हैं, जिन शुभ नाम कर्मों का हम बंधन करने के लिए तरस रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे दिल में इस सिद्ध चक्र मंडल भाव विधान करने में कि किसी कोने में जो कर्म बांधने की अभिलाषा हो, पुण्य कर्म बांधने की अभिलाषा हो, तो उनको या जो आप पूजन पढ़ रहे थे उस पूजन पे आप बारीकी से ध्यान देंगे तो उसकी सच्चाई का पता लगेगा। वैसे तो पुण्य प्रकृतियां बहुत होती हैं, और उन प्रत्येक पुण्य प्रकृति का तुम्हें नाश किया इसलिए हम तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। यदि तुमने बहुत बढ़िया पुण्य बांधा था और हमें भी बंधेगा इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सब प्रकार के पुण्य कर्म का तुमने नाश किया था तब मोक्ष गए थे, इसलिए हम भी उसी भावना से आपकी पूजन कर रहे हैं। निकालो 102 पेज जो अभी अभी आप पढ़ रहे थे। सिर्फ 3 छंद में आपके सामने बताऊंगा इनका। एक 144, 145, 146, ये 3 छंदों की चर्चा में आपसे कर रहा हूं। 43, 44 और 46, इन 3 कर्मों की चर्चा मुझे आपसे करनी है। एक कर्म ऐसा होता है कि जिस कर्म का उदय हो तो अपना यश होता है, और एक कर्म ऐसा होता है कि जिस कर्म का उदय हो तो अपना अपयश फैलता है। इसके छंदों में ऐसा लिखा है, देखो तो पढ़ लेते हैं, कि भले ही आप कितने अच्छे काम कर रहे हो, कितने ही अच्छे गुण आप में हो, फिर भी काम खोटे कर रहे और यशस्वी कर्म का उदय है तो आपका यश होगा उसी काम से। काम अच्छे कर रहे और उसी काम का बहाने आपका अपयश हो रहा। क्या तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे यशस कीर्ति उनके ही उदय आती है कि जो खोटे काम कर रहे होते हैं, और अयश कीर्ति उनके उदय आती है जो अच्छे काम कर रहे होते। ऐसा नहीं है। एक तो सिर्फ हमारे दिमाग में जो ये जमा हुआ है कि अच्छे काम करेंगे तो यश होगा और बुरे काम करेंगे तो अपयश होगा, क्या तो इस मान्यता को वो हटाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा वर्तमान के कामों से वर्तमान के यश और अपयश का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है तुम अच्छे काम करो और तुम्हारा यश हो, बुरे काम करो और अपयश हो, और उल्टा भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि बुरे काम करोगे तभी यश होगा, समझे? वो तो कहते हैं कि वर्तमान में जो यश हो रहा है, जो आपको अनुकूलता मिल रही है, वो आपके वर्तमान के किसी काम का फल नहीं है। पहले जो आपने किया था कुछ अच्छा, उस वक्त जो कर्म बना था फिर उसका फल है, और अभी जो भाव कर रहे हो इसका फल कर्म बनेगा, और जब उदय में आएगा तब मिलेगा। इन कर्मों की एक बड़ी विचित्र बात है कि जब ये बंधते हैं तब कोई दुख नहीं देते, दुख में निमित्त नहीं है, देते तो है ही नहीं। जब तक सत्ता में पड़े रहते हैं तब तक भी तुम्हारे दुख में भी निमित्त नहीं है। समय साल में लगा है पृथ्वी पिंड समाना, इस पृथ्वी के ढेले के समान है, इस पृथ्वी का ढेला पड़ा है, आपको कोई लेना देना नहीं। और जब उदय में आते हैं तब आपके सुख दुख में ये निमित्त बनते हैं, और उदय वही एक समय का होता है, अगले समय तो दूसरे कर्म का उदय आ जाता है, अगले समय तीसरा। तो देखिए कितना कम काल है कि जब ये अपना कमाल दिखाएंगे, वो भी निमित्त रूप से, उपादान रूप से नहीं, जिसे इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कि जब उदय में आएंगे तब फल देंगे, सत्ता में कितना ही पड़े हों अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बुरे काम की नहीं अच्छे की भी, अभी अपने जो पहले भगवान होने वाले ना भविष्य में महापर्ण सैनिक राजा का जीव, अभी वे नरक में पड़े हैं, और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रगति उनको सत्ता में पड़ी है, और सत्ता में नहीं पड़ी है प्रति समय बंध रही है, क्योंकि वो निरंतर बंधी प्रकृति है, फिर भी दंडे पड़ रहे हैं, उसका कोई फायदा हुआ नहीं है। क्या भयंकर जो गर्मी है उसका दुख उन्हें भोग नहीं पड़ रहा है, जो इतना बढ़िया कर्म अंदर पड़ा है और बांध भी रहे हैं, ये क्या फायदा है, ऐसे बुरे का कैसा है। देवगति में है अभी और छोटे कर्म बांध रहे हैं, और मान लीजिए त्रिंतायु बन गई है, एक केंद्रीय पर्याय में पैदा होना देव एक केंद्रीय हुआ है ना, बांध सत्ता में भी पड़ी लेकिन अभी सब अनुकूलता। तो ये वर्तमान में जो आपको अनुकूलता प्रतिकूलता दिखती है, यह सर्वप्रस दिखता है, इसका वर्तमान की क्रिया से कोई संबंध नहीं है। और इस तत्व को जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों के बहुत लोगों की यह शिकायत है, प्रश्न है, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा मेरे से पूछा जाता है कि साहब हम देख रहे हैं कि जो दिनारा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इस काम में लग रहे हैं, और उनको तो इतनी प्रतिकूलता है, कोई पूछता नहीं है, इज्जत भी नहीं देता है, क्यों, और ये पांचों पापों में लग्न हैं, इन्होंने बड़े बड़े खुले धंधे चला रखे हैं, हैं आकर के कुर्सियों पर ये जम जाते हैं, और सारे तुम जैसे पंडित इनकी गीत गाते हैं, क्यों ये शिकायत है। वो इस अर्थ में करते हैं कि हमारा भारत देश में इतना अधिक धर्म है और वो ज्यादा दुखी है, और अमेरिका में इतना अधिक अधर्म है और ये सुखी है, ठीक है। तो वो ये नहीं जानते हैं कि वर्तमान में जो संयोग रूप सुख है वो तो सुख तो है ही नहीं, लेकिन जो भी संयोग रूप सुख है वो तो पहले कर्मों का फल है, और जो अभी कर रहे हैं उसका फल तो भविष्य में मिलेगा। तो हमारे चित्त में अच्छे काम करते समय पर हमें कोई अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो आपको इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, वस्तु के स्वरूप में, वस्तु के स्वरूप के अनुरूप ही वो बात है। और कोई पापी फल फूल रहे हैं तो भी उन्हें देखकर अंदर से दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं, पाप करने से सुखी होते हैं, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात उसमें ये बता रहे हैं वो कि वो जो कर्म एक समय में उदय में आएगा ना, तो वो भी फल कब देगा, यशस्वी कर्म की अपन बात कर रहे हैं ना, पुण्य है, और आपका उदय आया और खूब यश हो रहा है, लेकिन आपका उपयोग उधर है ही नहीं, और आपको जोर की भूख लग रही है उसमें उपयोग है, तो आप दुख का ही वेदन करेंगे, उस यश का वेदन करेंगे ही नहीं, आगे निकल जाएगा और तुम्हें उसका उस वक्त भी उदय में आते वक्त भी फल नहीं मिला, क्या समझ गया ना। ऐसे ही पाप कर्म है और उदय में आया और तुम्हारा अपयश हो रहा, लोग गालियां बक रहे लेकिन तुम भगवान की पूजा भक्ति में लगे, स्वाध्याय में लगे और तुम्हारा उपयोग उधर गया ही नहीं, तो वो अपयश लोक में तो हुआ लेकिन तुमने उसे नहीं भोगा। वो तो हमारे कान में आओ और हम उसका फीलिंग करें तब भोगे ना, है ना। देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना, पैसा वो अभी बहुत बुराई कर रहा था, गालियां दे रहा था, अब क्या कह रहा था कि मैं कह नहीं सकता, और कह नहीं सकता कह के और सब और नमक मिर्च लगा के सुना देता है। मैं कहता हूं भैया वो तो पीठ पीछे कह रहा था, और तू तो मौके कह रहा है उसके नाम पर, हमें नहीं सुनना कि वो बहुत गालियां दे रहा था तो दे रहा होगा कि आप तो सज्जन हो, आप तो सुनते नहीं हो, लेकिन 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 कुछ नहीं, दूसरी कोई बात करो, आत्मा की बात करो, ये भाई बात मुझे नहीं सुननी है क्या, कि मैं साहब आपको पता ही नहीं चलता मैं बता रहा हूं और आप मेरे से नाराज हो रहे हैं। हाँ हो रहे ना, क्योंकि हमारा उपयोग खराब तो तेरे बताने से होगा, उसके पीठ पीछे बकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और कभी कभी आप स्पष्ट देखते हो कि आपने वहां से खड़े होकर के हमें दो चार गालियां बक दी के बकते हो, समझ में आता जाता कुछ नहीं है, जो कुछ मन में आता है बोलते हो, ठीक है, और हमने बिल्कुल मुस्कुराते हुए उसका कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। यदि हमारे यशस कीर्ति कर्म का उदय है तो सब कहेंगे कि देखो कितने महान है, जो गालियां बकता रहा लेकिन तेरे पर चल नहीं पड़ा। और अस्कीर्ति कर्म का उदय है, डरपोक डरते हैं छेदियों से, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते, हमसे कोई कह के देखे हम खटिया खड़ी नहीं करते, तो मेरा नाम नहीं बोला तो बात तो दुर्भाग तो हमारा वो ही है, समझे ना, लेकिन यश भी हो रहा और अभ्यस भी हो रहा। हमारे अभ्यस कीर्ति कर्म का उदय होगा तो हम डरपोक कहकर के निंदा होगी, यश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो कितना मन कसाय वाले हैं, कितना शांत प्रकृति के हैं, होगा ना। और ऐसे ही हम वो दो सुना और हम दस सुना दें स्पीकर पे, तो भी यदि हमारा ऐसा कीर्ति कर्म का उदय होगा तो सब वो पंडित किसी से डरता नहीं है, निर्भीक निर्भीक एक गुण है, निर्भीकता भी एक गुण है क्यों। और ये भी कहेंगे देखो तो दूसरों से कहते कसा अमर करो, कसा अमर करो, और खुद कितनी कसा करते हैं। यानी ये जो यश यश का संबंध है वो हमारे पुण्य कर्म के उदय पाप कर्म के उदय के अनुसार है, तुमने वर्तमान में क्या किया और हमने वर्तमान में क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो ये बताना है, दूसरी बात ये बताना है कि इन भगवान को यशस्वी कीर्ति कर्म का उदय था, ध्यान से सुनना, तब तो हम अभी उनकी पूजा कर रहे हैं ना, क्यों हमारी तो कोई नहीं कहता, उनकी कह रहे हैं आपको कुछ बता भी नहीं रहे, हम बता रहे समझा रहे तो भी नहीं, क्यों कर रहे हैं? नहीं पूछूंगा सुनील शास्त्री, तुम तो धंधे वाले हो गए, तुम क्या पता पता हो गए, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों उनका आज ही हम पूजा पाठ कर रहे हैं, महावीर की जय के नारे लगा रहे, क्यों हो रहा है ऐसा? कोई बात भूलना नहीं, इज्जत दाव पे लग जाएगी, क्यों ऐसा सिद्धि कर्म का उदय है उनके है। वो तो अरे भाई ये तो लिखा है ना, अरे मोक्ष में गए तो ऐसा कीर्ति नाम कर्म का नाश करके गए हैं, अरे उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, ना तो वो उपादान है ना उनका कोई कर्म परम निमित्त है इसमें, ये तो सिर्फ हमारा विकल्प है, समझे ना। तो वो बता रहे हैं कि जिन कर्मों को नाम सुन सुन के हमारे मुंह में पानी भर आता है, भगवान उन कर्मों को तुम नाश करके मोक्ष में गए, इसलिए हम तुम्हें आग चढ़ा रहे, तुम्हारे मुंह में भी पानी आता तो हम तुम्हें अर्घ नहीं चढ़ाते, तुमसे कहते आओ हमारे बगल में बैठ जाओ तुम भी चढ़ाओ क्या, ठीक है न। और एक अंतिम है 146 खंड में, चरित्र कल्याण 34-38 है, 8 प्रातिहार समोसरण की द्युति, ये सब तीर्थन का नामकरण की प्रकृति के उदय से होता है। तो हे भगवान, आपने वो तीर्थंकर प्रकृति बांधी और आप तीर्थंकर बने, इसलिए मैं तुम्हें अलग नहीं करा रहा हूं। उस तीर्थंकर प्रकृति का तुमने नाश किया, इसलिए मैं तुम्हें अलग करा रहा हूं। ओमरी में लिखा क्या लिखा? अरे ये तो सरल कर दी है, आप लोग घबराए नहीं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति कर्म रहता है नहीं, छंद तो पढ़ो क्या लिखा छंद में। तीर्थंकर विधि विभव नाश निज पदे लहो नाश। तीर्थंकर प्रकृति नष्ट की है, इसलिए तुम्हें अर्घ चढ़ाता। क्या माने? तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य नहीं है, नाश करने योग्य है, पर सत्ता से उभार फेंक देने लायक है। क्या मोहनलाल जी, किसने लिखा कि नहीं लिखा? एक छंद आएगा इसमें शायद 972 मा होगा, अंदाज से उसके आसपास होगा, 78 हो सकता है, 72 हो सकता है, जिसमें लिखा है कि हे भगवान, अत्यंत निर्दयाय नमा अर्घम। कि भगवान तुम अत्यंत निर्दयी हो, इसलिए मैं तुम्हें अर्घ चढ़ाता हूं। तो लोगों को लगे बहुत गड़बड़ है। ये सबसे पहली प्रति थी ना, उसमें ये छपा था, तो फिर कुछ लोगों ने उसमें करेक्शन कर दिया। फिर क्या लिख दिया कि ओम ग्रीम दया रहता है नमा अर्घम, अत्यंत निर्दय शब्द में बुरा लगा और दया रहे तो अच्छा लगा, जबकि दोनों का एक ही अर्थ है। निर्दय माने क्या होता है? निर्गतो दया यस्य सः निर्गता, जिनमें से दया निकल गई है, पहले थी अब निकल गई है, क्यों? और दया रहित कहो होता निर्दय कहो, लेकिन नहीं, हमको निर्दय सब तो बहुत ही, भगवान के लिए निर्दय कहना ये हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें ये अवगुण लगता है। रतनलाल जी साहब ये कह रहे सिद्धों का सबसे बड़ा गुण है। तो सुधार जब दया रहता है कर दिया, तो फिर कहा देखो क्या फर्क पड़ा, हमने जैसे लोग निपटने में व्याख्यान शुरू किया, पहले तो अत्यंत निर्दया निकाल के बताते थे, तो उन्हें अगली प्रति में बदल के क्या कर दिया? दया रहता है कर दिया। तो हमने उसका कहा क्या फर्क पड़ा, तो यहां से काम पकड़ो, तो यहां से पकड़ो, बात तो वही है, क्यों? तो फिर बदला उनने, लिख दिया निर्मोहाय नमार्घम। अब किसी की समझ में नहीं आएगा, सुनिए ना, मोह मोह, अरे मोह दया भी मोह ही है। अब उनने क्यों कर दिया ऐसा? कि उस छंद में ऐसा लिखा है कि हे भगवान, दया जो है तो दया का प्रकरण वो मोह कर्म के उदय से होती है। कोई निकाल के बताओ, निकालो क्या चलो कौन सा 78 हाँ 979 979। अब मुझे अभी करीब याद रहा, समझिए ना, मतलब बहुत नहीं याद रहा। पद दुख में दुख हो जहां, मोह प्रकृति के द्वार, दया कहें तिस को सुमति सो तुम मोह। वहां से दया निवार था, फिर मोह निवार कर दिया, और फिर कर दिया नीचे अत्यंत निर्मोहाय नमार्घम, अत्यंत निर्दया का बोला ना क्या लिखा। अब छंद में तो पढ़े ना क्या लिखा, दया किसे कर, दया बहुत अच्छी चीज है ना, दया तो होनी चाहिए ना, बहुत अच्छी चीज, हमें भी दया हो ना बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन इसमें क्या लगा? पर दुख में दुख हो जहां, दूसरे के दुख को देखकर जो अपने चित्त में दुख होता है उसका नाम दया है। दया काय का नाम है? दुख का नाम है। कैसे दुख का नाम? जो मुफ्त में होता है, हमें कोई है ही नहीं, लेकिन दूसरे का दुख देख के जो दुख होता है उस दुख का नाम दया है। और ये बात अजैनियों की समझ में भी आ जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल नाम के आचार्य, रामचंद्र शुक्ल नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने करुणा नाम का लेख लिखा है और उसमें जाके देखो तो उन्होंने जो करुणा की परिभाषा दी है वो यही दी है कि दूसरों के दुखों को देखकर अपना जो दुख हृदय में होता है उसका नाम है दया, करुणा। अब हम उसको इलाज करते हैं उसके दुख का, क्यों? कि उसके दुख का तुम इलाज नहीं कर सकते, उसके पाप का उदय तो तुम क्या करोगे? हम तो अपने उस दुख का इलाज करते हैं, उसका सहयोग करने करके क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दुख हुआ उसका इलाज करते हैं, तो हम अपने काम में लग जाते हैं, हमारा दुख कम हो जाता है, वो तो दुखी रहता ही है। क्यों? एक टाइम तुमने रोटी खिला दी सुखी हो गया, शाम का क्या होगा? तो शाम का शाम को दुख होगा। अरे शाम का अभी से दुख शुरू हो जाता है, अरे शाम को क्या मैं खाऊंगा? समझ गए? तो वो कहते हे भगवान, तुमने उस दया का नाश कर दिया और इसलिए तुम अत्यंत निर्दय हो, ये लिखा है। अब देखिए कन्हैया जी उन सब प्रकार के दुखों का अभाव कर दिया फिर कि नहीं, उनने किया कि नहीं किया, तो इस दुख का अभाव करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मान लो कि वो इनको नहीं होता ये, तो सबके भगवान तो बहुत दयावान है और अपने भगवान निर्दयी, अपन को समझ में नहीं आता। लेकिन कल्पना करो कि वे मोक्ष में है और उनकी दया रहती तो क्या होता? वे अनंत ज्ञान के धनी हैं, तो सारे नरक के दुख उन्हें दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? अपनी आंख सीधे बिल्कुल डायरेक्ट आत्मा से, और उनमें कई घरों के माँ बाप भी पड़े होंगे, डंडे खा रहे होंगे, कई घरों की माँ बहन होगी और वो कई महिला होगी और कोई उसकी इज्जत लूट रहा होगा, वो सब उनके ज्ञान का जय बन रहा है। इतने दुखी जीवों को देखकर उनको दया आती और वे कर तो कुछ सकते नहीं है, एक तो सिद्धिशिला में बैठ के आ भी सकते, क्यों? और आ भी जाए तो यदि वो कुछ कर दें तो इसका मतलब है हर आदमी अपने पाप कर्म का फल नहीं भोगे, तो उन्होंने लोक की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, कौन बर्दाश्त करेगा? ईश्वर आदमियों पर यही तो आरोप है कि तुम्हारा भगवान दयालु है तो इतने जीव दुखी क्यों? कैसा दयालु है वो? तुझे पता नहीं है कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो फिर तुम उत्कार का दयालु, हमारे कर्म का अच्छा आ जाएगा तो फिर हमारे कर्म से हुए तेरे से क्या हो गया? परेण दत्तम यदि लब्ध दे सुतम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, यदि सुख दुख और जीवन मरण कोई किसी को दे सकता है तो हमारे किए हुए कर्म बेकार हो गए। ये तो न्याय है ना, हमने अच्छा काम किया हो तो हमें फल मिलना चाहिए अच्छा, और बुरा किया हो तो बुरा मिलना चाहिए, और बुरा फल मिल रहा है उसे, क्यों? भगवान तो मुख्य से नहीं आ सकते ना। एक बात आपने सुनी होगी, पद्म पुराण पढ़ा कि नहीं, कि सीता का जीव मर के गया सूर्य में स्वर्ग, और लक्ष्मण और रामायण के जीव कहां गए वो आपको पता है? तो बहुत दया आई सीता को, किसके? लक्ष्मण पे आई, वो तो बहुत ठीक ही है, रावण पे भी आई, और उन्होंने कहा कि मैं वहां से नरक में से निकाल के लाऊंगी, तो गई वहां, सुरक्षा जीव नरक में गया, बहुत ट्राई करी निकालने की लेकिन नहीं निकली, तो वो समझती नहीं थी। लेकिन भैया मोह का ऐसा उदय होता है कि सब उस वक्त सब भूल जाता है, क्यों? अरे वो तो सुनो सुरक्षित थी से नहीं निकाल पाई, यदि मोक्ष में से रामचंद्र जी आ जाते तो वे तो निकाल ही जाते ना, क्यों नहीं निकाल पाते? और पता सब है, तो यदि वे निर्दय हुए बिना मोक्ष चले जाते तो अनंत दुखी होते, अनंत सुखी नहीं होते। कितना अध्यात्म समय इसमें भरा पड़ा है, सिद्ध ध्यान में आपको उसकी कल्पना नहीं है। अभी हम और ज्यादा लंबा करेंगे तो आपकी जयमाला रह जाएगी। निकालो अपना पेज नंबर कितना है जयमाला, 349 पेज पे। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, परम ब्रह्म परमात्मा, कहते पंच परम पद ईश हैं। ये पंच परमेश्वरी के जो पद है ना, ये ईश हैं। और हे सिद्ध भगवान, तुम इनके जगदीश हो, पंचम गति जगदीश है ना। पंच परमेश्वरियों में ये तो सब ईश है ही, तुम भी ईश हो, लेकिन तुम जगदीश हो। और जगत प्रपंच रहे सदा, इस जगत के सारे प्रपंचों से आप दूर हो गए। कौन से प्रपंच? क्यों कौन से प्रपंच इसमें ही आएगा? क्यों शांति जी, तो है सुख दुख करण कुरीति तार, इसमें ही है ना। एक 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 जयमाला में ऐसे पंक्ति है कि हे भगवान आपने क्या काम किया, तो जगत में दूसरों को सुखी करना दुखी करना इस कुरीति का तुमने नाश कर दिया। सुख दुख दुख करण कुरीति तार, ऐसा ऐसा जयमाला में है। समझे, अभी आएगा, इसमें नहीं होगा तो अगली में आएगा। तो कहते तुमने ये काम किया, ऐसे तुम जगत के ही सब, और ऐसे जगत के ये प्रपंच है। कौन ये कौन सा प्रपंच है? ये दुनिया का ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं प्रपंच, वो प्रपंच नहीं। ये जो सिद्धक विधान अपन कर रहे हैं ना, ये क्या है? प्रपंच है। नहीं होता तो सिद्ध भगवान करते ना। प्रपंच समझते किसे बोलते हैं? सही अर्थ क्या है भगवान जी प्रपंच का? आप मेरे दलाल को जानते ही होंगे, प्रपंच माने होता है विस्तार। किसी चीज की डिटेल में जाना उसका नाम है प्रपंच। अलामिति प्रपंच ने आता ना अपने साथी में बार बार, कि अधिक विस्तार से क्या फायदा। अधिक क्या था प्रपंच कर रहे थे, तो किसी चीज की विस्तार में जाना, तो सिद्ध गुणों के एक एक के विस्तार में अपन जा रहे, आठ कर्म की गिना रहे, उनकी प्रकृतियां गिना रहे, तो प्रपंच हो गया। क्या समझे? इन सारे प्रपंचों से रहित भगवान सिद्ध हैं, वो जगत के ईश हैं, वे परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परम ज्योति हैं, मुक्ति में रहते हैं, उन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब कहते कैसे है वो, पढ़ो भाई। जन्म मरण कष्ट को तारिया मेरा भय, भगवान कैसे हैं? उनके चार विशेषण दिए, अमरा अजरा अमला और अचला। वे अमर हैं, अजर हैं, अमल हैं और अचल हैं। ये चार विशेषण है ना। तो कहते हैं जन्म मरण के कष्टों को दूर कर दिया है, इसलिए वे अमर हैं। अजर मृत्यु के नाश करने का नाम अमर नहीं है, जन्म मरण दोनों के अभाव करने का नाम अमर है। और जरादि रोग व्याधि इनको दूर किया है, इसलिए वे अजर हैं। जरा माने होता बुढ़ापा, और अजरा माने बुढ़ापे से रहे। तो बुढ़ापे में रोग सभी शामिल कर लेना, क्योंकि बुढ़ापा भी एक रोग है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बुढ़ापा एक रोग है? दोष लिखा है, रोग क्या लिखा है? अठारह में तो रोग नाम का एक दोष है।
जब लोग रोग जरा
क्यों अरे भाई तुम रोगी नहीं बोलते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशना, जन्म जरा मृत्यु तीनों को रोगी मान लेते हैं, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशना है ना, रोग बोलते हैं तीनों को रोग कहते हैं। और द्विविध कर्म मल जार, दो प्रकार के जो कर्म मल, द्रिव कर्म और भाव कर्म, उनको आपने जला दिया है इसलिए आप अमल हो गए। और द्विविधि परिग्रह, द्विविधि तार संसार, दो प्रकार का संसार है ना, एक द्रिव संसार एक भाव संसार, वो दोनों को टाल कर आप अचल हो गए। अनंत और सिद्ध भगवान में क्या फर्क है? अनंत भगवान अमल है पर अचल नहीं है, उनका विहार होता है, चलायमान होते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान अमल भी है और अचल भी है। चार घातिया कर्मों के उदय से जो दशा होती है उसे बोलते हैं मल, और अघातिया कर्मों के उदय से जो रूप बनता है उसको बोलते हैं चल। अब हम बोले चल मन दूर है ना, तो घातिया कर्म नष्ट हो गए इसलिए तो हो गए अमल, और अघातिया भी चले गए इसलिए हो गए अचल। और एक जगह ठहर जाएंगे अनंत काल तक, फिर वहां से यहाँ वहां घुमा फिरी नहीं होगी। अनंतों का तो विहार होता है ना। जय जगत वासुदेव, जगत स्वामी भये, ये विरोधाभास अलंकार है। इसमें विरोधाभास अलंकार का मतलब ये है कि जो जहाँ का स्वामी होगा वो वहां रहेगा ना, भारत का प्रधानमंत्री भारत में नहीं रहेगा तो अमेरिका में रहेगा, कहें तो भारत के प्रधानमंत्री लेकिन रहते हैं अमेरिका में, क्यों? राजस्थान का मुख्यमंत्री कहाँ रहेगा? राजस्थान में रहेगा। लेकिन आपने उल्टा किया कि जगत के स्वामी हो तो जगत के पास चले, जय जगत वास तज, तो संसार के वास को छोड़ दिया है फिर भी जगत के स्वामी हो, ये विरोध है। विरोधाभास अलंकार है, विरोध दिखाई दे और विरोध होए नहीं, क्योंकि वे ऐसे स्वामी नहीं है कि हरेक को बुला बुला के आज्ञा देते हैं। क्यों? जगत उन्हें अपना स्वामी कहता है लेकिन वे किसी को अवका स्वामी अपने को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने तो स्वामित्व बुद्धि तभी छोड़ दी थी जैसे मदद किया था धर्म से है क्या, लेकिन जगत स्वामी कहता है, सारा जगत जिन्हें स्वामी कहता है। लेकिन अब देख ये कितना झूठा आरोप है उन पर, कहते हैं क्यों कि वे जगत में रहते ही नहीं तो जगत के स्वामी कैसे हो सकते हैं, है ना। जय बिना नाम तेरे परम, तेरे भाव अपने कहते वो नामी आदमी है, नामी आदमी है ना, बोलते ना। देखो अरंत में महावीर थे ना, उनका अरंत का दशा में नाम महावीर था, भगवान महावीर, शिवंकर भगवान महावीर आदिनाथ। अब सिद्ध में क्या नाम है उनका? अब पुराने नाम से अपन काम चलाते हैं, सिद्ध दशा में तो कोई नाम नहीं है, लेकिन नाम के बिना नामी हो, सबसे नामी माने सबसे धर्मान, अपने बोले नामी आदमी है, वो नामी आदमी है माने सबसे बड़ा महान। तो जगत का नाम बिना नाम के नामी हो तुम, है ना। और जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूप आप, हे कुबुद्धि को छोड़कर सुबुद्धि रूप हो गए। अब क्या बुद्धि को बोलते हैं मति ज्ञान को, अमति ज्ञान का नाम है वो, अपन ने वो पूजन लिखी ना महावीर पूजन में है ना, क्या लगा मति ज्ञान रहित सन मति दिनेश, क्या थे कि सनमति और कुमति तो मति ज्ञान के भेद हैं, और आप तो मति ज्ञान हो ही नहीं और केवल ज्ञान ही हो गए, इस दूर हम देखे तुमको सनमति कहता है। भगवान महावीर का एक नाम सनमति है कि नहीं, तो सनमति और दुर्मति तो मति ज्ञान वाले होंगे ना, है? क्या 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 सन बोलना था अभी जो बोला था, रहे सन मति जनेश, आगे बोलो जीत आगे आगे भी ऐसे कई प्रयोग हैं, आगे ऐसे कई प्रयोग उसमें हैं कि विरोधाभास है। लोग कहते हैं सन्मति और तुम सन्मति तो हो ही दुर्मति है क्या, अरे ना तुम सन्मति हो ना दुर्मति हो, तुम तो केवल ज्ञानी हो, ख्याल में ना। कर्मे विपुनाश करे परमे जय पाइए, उन्हें कर्म ऋषियों का नाश करके वास्तविक सर्वोत्कृष्ट जीत प्राप्त की है, क्योंकि जगत में जो और जीत होती है उसे हार में बदलते देर नहीं लगती है। समझे ना, एक चुनाव जीत के अगले चुनाव में फिर हार गए, लेकिन ये आप ऐसी जीत पाई कर अंत काल तक फिर तुम उसको हारने वाले हो ही नहीं। तीन लोक में तुम्हारे यश रूपी घनमाने बादल छा गए हैं, लोक त्रय पूरे तुम्हें सुगत घन छाइए, यश रूपी बादल छाए हुए हैं। इंद्र नागेंद्र, इंद्र और नागेंद्र तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं, और महाभैराग्य रस पाग मुनि बल भजे, कहते फिर तो रागी देसी है इंद्र नागेंद्र, फिर तो करेंगे ही ना बैरागी लोग, कहते महाभैराग रस में पगे मुनिराज भी तुम्हारे चरणों में नमते हैं, तो रागी भी नमते हैं और बैरागी भी नमते हैं। अब जरा ये मामला गड़बड़ आया, देखो करो करो देखे मैं क्या बोलो शुभम जी, विघन बन दहन विघन बन दहन को अघन घन पौन को ना सघन गुण रास के बास को घोन, कहते विघन बन दहन विघ्न रूपी जंगल को तुम जलाने वाले हो। ये जो को है ना ये गलत छपा है, क्या होना चाहिए दो। अब क्या करें समझ में नहीं आती, मानते नहीं है क्या है क्या है दो क्यों होना चाहिए, जो समझ में नहीं आता देते। विघ्न रूपी जंगल को जलाने को लिए दावाग्नि है, वो जंगल में आग लग जाती है ना, कल प्रश्न बताई थी उसे दावाग्नि बोलते हैं, समुद्र के भीतर आग बर्बाग्नि बोलते हैं, ये दो है दावाग्नि का दो था। अरे मुझे 50 साल पुराना याद है, अब मैं बदल देते हैं हम क्या करें, हमें समझना नहीं आता है दो दो क्या होगा, दो क्या होता है, दो क्या होता है। बिघने बने दहने दो, दो दाने आमला के दो ऐसा लेकिन दहने बने दो माने दावाग्नि, ऐसा कर तुम देख घबराहट होते बिघने बने दहने दबे, फिर दो तक करते हैं दब दब के दो खत्म हो जाएगा काम, फिर तो समझ में आएगा सुधारा तो ऐसा सुधार न था। बिघने बने दहने दबे अघने घने पौन हो, विघ्न रूपी जंगल को जलाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जंगल जलाना है तो साधारण आग से काम थोड़ी चलेगा, जो दावाग्नि होगी तो साफ कर देगी, और अघन घन पौन हो, ये अघन घन क्या होता है, अघमाने पाप होते हैं तो आप जानते हैं ना, और उसको बहुवचन बनाओ तो अघन माने पाप, बहुत से पाप, और वही हुआ जंगल ना, तो अघन घन तो कहते हैं पाप, पाप के घने जंगल को, घन घन माने मेघ, पाप के मेघों को उड़ाने में तुम पूर्ण हो, माने हवा हो, हवा बादलों को उड़ा ले जाती है, हवा चल गई तो के बादल हमारे यहां नहीं बसेंगे, तो क्या अघन घन पौन हो, आगे कहां गया है, अघन घन पौन हो, अग पाप रूपी मेघों को उड़ाने के लिए तुम तूफान हो, साधारण हवा नहीं जो बादलों को उड़ा ले जा रही हवा, और अघमान पाप क्यों होता है, क्यों घा माने होता है आत्मा, जानते कि नहीं जानते, और अघ माने जो आत्मा का आश्रय नहीं लिया उसको बोलते हैं अघ, इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही अघ हैं, नहीं जानते, का माने पृथ्वी होता है जानते कि नहीं जानते, खा माने आकाश होता है जानते कि नहीं जानते, खग खग बोलते पक्षियों को, खा माने आकाश, आकाश में जो चले वो खग, तो खा माने आकाश हो गया ना, और घा माने आत्मा। एक एक अक्षरों के शब्द हैं जिससे तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, और शब्द के प्रयोगों में लगाना पड़ेगा, है ना। अजो माने आत्मा आराधना से रहे, जो भी काम है ये सब अलग। खपुस बोलते हैं ना, मन आकाश के फूल। खग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, काम आने पर। कौमुदी, ये कौमुदी क्या है, पंचो ना, कौमुदी पढ़ाते भी हो तुम तो, क्या है कौमुदी, क्या होता है। को माने सारी पृथ्वी, तो उसमें प्रसन्नता फैला दे, उसको बोलते हैं कौमुदी। बिघने झंड बिघने बने दहन, बिघने बने दब दहन, बिघने बने दहन दबे अघने घने पौन हो, सघने गुणे रास के बात को भौन हो। एक गुण तो अनंत है, उनकी रास का ढेर के ढेर लग रहे, और बहुत घने 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 हैं, एक दो एक दूसरे में है ना, तो ये रहेंगे कहाँ। कि उसके लिए तुम बहुत बढ़िया मकान हो, भवन हो, भवन हो, राजभवन हो तुम, वहां जाके सारे अनंत गुण इकट्ठे हो जाते हैं। भक्तांबर में ऐसा लिखा है कि हे भगवान तुम अनंत गुण के ढाल हो। तो क्यों हो गया तुम अनंत गुण, तुमने क्यों आ गए। दूसरी रूपात विविधास रहे जाते घर भई सुपनांतरो नमज, हे भगवान तुमने गुण ही गुण भर गए, तो एक दुर्गुण नहीं आया, नहीं समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होगा। कि दुनिया में दोष भी निकले, कोई घर नहीं मिला उन्हें, और गुण भी निकले, लेकिन दोषों को विविधाश्रय जहां गए लोगों ने आइए साहब आइए आइए स्वागत किया। दूसरी रूपात विविधाश्रय, दोषों को तो बहुत आश्रय मिल गए, जहां गए वहां स्वागत हुआ। यदि घमंड में आ गए तो तुम्हारे पास क्यों आते बिना बुलाए, जिनने स्वागत किया उनके पास गए, और गुण फिर क्यों आ गए हमारे पास, हमने उन्होंने भी नहीं बुलाया था। कि क्या करें जहां गए किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने स्वागत ही नहीं किया, बल्कि किवाड़ और बंद कर लिए, तो सारे के सारे गुण तुम में जाके भर गए, इसलिए तुम अनंत गुण वाले हो। कौन सा काव्य पूरा बोलो, आधा तो मैंने बोल दिया, दो सही रूपात पे दूसरी पंक्ति बोल, पहली बोलो। ये संसदास विदास, ये तो हो गई विद्यापीठ भाई, अब पहली बताओ गुण क्यों आ गए। गुण इसलिए आ गए कि कहीं उनको आश्रय नहीं मिला। तो कहते हैं भगवान तुम अनंत गुण की राशि जो है उनके लिए तुम बहुत सुंदर मकान हो। इसका पढ़ो क्या लिखा, सघन गुण रास के बास को भवन हो, भवन माने भवन मकान, कल में हो ना। शिवतीय बस करण मोहिनी मंत्र हो, ये वो जमाना था जब जो पंडित जी हुए थे ना संत कवि, तब ये वशीकरण मंत्र बहुत चलते थे, है ना। यहाँ भी एक किताब सभी थी, फिर वो समाज ने उसे अपना ही नहीं, क्या क्या नाम था, भूगोल क्या था, कोई किताब छपी थी ना, जो मंत्र तंत्र से स्त्रियों को कैसे काबू में करना, फलाने को कैसे काबू में करना, तो सारे मंत्र लिखे थे उसने, रघु विज्ञानवाद। हम दंडिया जी ने भी उसका बहुत विरोध किया था, है ना, हैराद आपको रतनलाल जी, है ना। तो कहते हैं कि भगवान अब शिवतीय मुक्ति रूपी स्त्री को बस करने के तुम मोहिनी मंत्र हो, और मोहिनी विद्या होती है ना, मोहित कर लेती है वो आजकल क्या बोलते हो तो क्या बोलते हैं, और उसको लेकर के फिर उसके पीछे पीछे चला जाता है ना, उसको मोहिनी मंत्र बोलते थे पहले, कि वो ऐसा कर लेता है उसके पीछे पीछे भागता है वो। तो तुम्हें मुक्ति रूपी कन्या को बस करने में मोहिनी मंत्र हो, तब तो तुम्हारे पीछे लगी हुई है, और ایک راگ جس سے ہم راگ کرتے ہیں اس کو ہم بسنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس سے ہم بیس کرتے ہیں اسے نش کرنا چاہتے ہیں، تو ویسے بھی منتر تندر سے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کال چھ کار یمراج کو نش کرنے کے لیے تم بیتال کے یتر ہو، تمہیں یتر ہو، تمہیں منتر ہو، تمہیں جنتر ہو، تمہیں دنیا میں جو سرو شریشٹھ پدارتھ ہیں وہ تم ہو، کیا ان کے ساتھ میں لگائے. اس میں ساہتک، اس میں ساہتک بہت ہے جو اوبھائی دروے بتا رہے تھے نا ابھی آپ کو شانتی جی، ہے یار اوبھائی دروے کیا ہوتا ہے، اوبھائی دروے کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں آپ نہیں بتا پائیں گے آپ کو ڈراؤں. اوبھائی مانے دو، اور دو کون سے درد اور بھاپ، یہ درد جو ہے تمہیں آپ نے اکثر مقصد لی اور ٹاؤن فاؤن، یہ درد درد ہے جل لی اور درد ہے، اور بھاپ سمجھے نا، میرے پاس اپنے جو بھاپ ہے وہ بھاپ ہے، اب اس کو اس میں بہت چھند ایسے ہیں اس میں، اب جے مالا کی تو ہے نہیں، جے مالا کے علاوہ بھی پوجن میں چھند ہیں، بہت بڑھیا بڑھیا چھند ہیں، بہت ساہتک ہے اس میں چھتا، اور آج کل یہ بن گئے ہیں مطلب سما دن سما جل سما اسے بڑا آدھیاتم کہتے ہیں، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہاں ہے آدھیاتم آدھیاتم اس میں. ہاں چلو آگے پڑھو کیا کلیش کو کلیش، جو بہت کال تک جو کلیش کلیش رہنے والا تھا، انت کال کا جو کلیش تھا اس کو میٹ کر تم مکتی میں گئے ہو، اپل کی نہ کرو تم کیا پتا پتھر جیسے ہو، اپل کی نقل ہو، اپل کی نقل کیوں ہے، پتھر جیسے کیوں ہو، پتھر ایک جگہ پڑا رہتا ہے، کیا جیسے تم ایک جگہ بس انت کال تک پڑے ہو، ایک جگہ گئے تو وہیں وہیں کیوں ڈٹے ہو، ہلتے بھی نہیں ہو، اپل کی نقل ہو اچل ایک تھل رہو، آگے سمجھنا کہ نہیں، پتھر جیسے کیوں بس ہلتے گلتے نہیں ہو، ابھی بھگوان وہاں بھی کھڑے تو کھڑے کیوں، ہلتے گلتے نہیں ہے، سپن میں ہوں، جو لوگ سپنے میں ہی اپنے آتما کو نہیں پراپت کر سکتے ہیں، کیا نا بے مہاخل تم دھیان دھر دھا بہی، ایسے لوگ بھی تمہارا دھیان کر کے اس کو پا لیتے ہیں. ہاں ہاں میں معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم نے غلطی کی ہے اس کو بتا رہا ہوں، ایک کھلن تھا ان نے نہ کر دیا، بہو بدن تھا، یعنی وہاں سے وہاں کھل ہو تو بھی وہ تمہارا دھیان کرے تو وہ اس کو پا لیتا ہے، اور کھل کیسے پا لیتا ہے، کھل نہ کھل نہیں پاتا ہے، گھر لگا دیا چلیے چلو آپ کے جاپ دن باپ سب بھینتے ہی آپ کے جاپ دن، یعنی آپ کا جاپ نہیں کریں تو سارے پاپ میرے من میں آ جاتے ہیں، باپ سب بھینتے ہی باپوں سے بھینت ہوتی ہے، آپ کے جاپ دن پاپ سب بھینٹے ہی، اور کیونکہ پاپ کے تاپ کو پاپ کب میں ہی پاپ ہمیں پاپ کے ہدے سے دکھ ہوا، کیوں پیسے کی کمی ہوئی، کیا بھی ہوئی پاپ کے ہدے سے ہوئی، وہ تکلیف پا رہے ہیں تو ہم خوب پیسہ نیا نیا سے کمائیں گے تو وہ کون سا ہوگا، پرگیہ نام کا پاپ ہی ہوگا نا، انیا سے کمائیں گے تو ہو گئی، لیکن نیا سے کمائیں گے تو بھی پنیہ تھوڑی ہو جائے گا، نیا سے کمایا ہوا جو پیسہ ہے وہ پریگرہ نہیں ہے کیا، کیوں اور پریگرہ پاپ ہے کہ پنیہ، تو کہتے ہیں پاپ کے لگا ہوئے داغ کو پاپ کب کیسے مٹے گا، پاپ کا تاپ کو پاپ کب مٹے گی، پاپ کے ہدے سے ہم دکھی ہیں اور اس دکھ کو مٹنے کے لیے ہم پھر پاپ کرم لگاتے ہیں. جیسے ہر ایک پاپ کا لگانا پانچ اندروں کے رشوں کی ہمیں پراپتی نہیں ہو رہی اس لیے ہم دکھی ہیں, اس لیے ہم پانچ اندروں کے اندر میں تیبر بھوگنے کی لالسا رکھ کر اور اس کی پراپتی کے لیے بڑی بھائی سامگری جوڑتے ہیں تو وہ پاپ ہی ہوا نا. تو پاپ سے جو تاپ ہوا وہ پاپ سے کیسے مٹے گا, ہے نا. سنت کبھی کہتے ہیں کہ ہے بھگوان آپ اپنے داس, میں تمہارا داس ہوں. اب یہ بھکتی کا آتا ہے نا تو یہ بات آ جاتی ہے, اور جگت اس لیے مجھے جگت سے نکال کر اپنے آچرن میں اپنے چرن اپنے چرنوں میں لے لو. ہے بھگوان آپ مجھے سدھ سلا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے, میں نے مکتی کی کامنا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. جائے امل انوپ بھگوان آپ امل ہو مانے لال دیش روپی میل سے رہے تھو, انوپم ہو آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ماں کیسی ہوتی ہے بولو, ماسی جیسی, نانی جیسی, مامی جیسی, دادی جیسی. ماں صرف ماں جیسی ہوتی ہے, یہ اسے انوپم کوئی اپما نہیں ہے جگت میں جسے دی جا سکے. تو صرف جیسا کیسی ہے, ارنج جیسی, آچاری جیسی, وہ انوپم ہے, اس سے کسی کے بھی اس کی اپما نہیں دی جا سکتی ہے. انوپم ہو گیا شدھ سروپم, شدھ سروپ اور نکھل روپم دھرم دھرا. دھرم کی جو پرتھوی ہے وہ سمپورن جو دھرم ہوتے ہیں پر وہ آپ میں سماہت ہو گئے ہیں. بگنوں کے نسائک, بگنوں کو نشٹ کرنے والے ہو, منگل کے دائک, منگل کو دینے والے ہو, اور پرمپرا سے تین جگت کے نائک ہو, ایسے سدھ بھگوان میں تمہیں نمسکار کرتا ہوں.